स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 23 अगस्त और दिन शुक्रवार। फ्रांस ने कश्मीर और अनुच्छेद 370 के मामले में भारत का दिया साथ। मोदी और मैक्रों के बीच लंबी बातचीत।
भारत और फ्रांस के बीच संबंध सैकड़ों साल पुराना है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में। ट्रंप ने कहा भारत समेत ईरान, रूस और तुर्की को भी अफगानिस्तान में चरमपंथ के खिलाफ लड़ना होगा। गाजियाबाद में 5 सफाई कर्मियों की मौत।
जल निगम की लैंड डली है तो उसमें जो घरों में कनेक्शन कर रहे थे कर्मचारी, उन्होंने कनेक्शन करने के लिए उसमें उतरे नीचे, उसमें पानी बारिश का भरा हुआ था।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस में हैं। यहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे को हटाने और अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के मुद्दे पर भी बात हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस पहले से ही ये मानता आया है कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को शांति से इस मुद्दे को हल करना चाहिए। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई अदालत ने 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। दुनिया भर के नेताओं ने ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के वर्षावन में लगने वाली जंगल की आग को लेकर चिंता जाहिर की है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस साल आग की घटनाओं में 80% बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि ब्राजील के जंगल धरती पर ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने और विविधता के प्रमुख स्रोत हैं और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी ट्वीट करके कहा है कि इस समस्या को G7 समिट में भी प्रमुखता दी जाएगी। पर्यावरणविदों ने ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की वर्षावनों के प्रति उदासीनता के लिए आलोचना की है। ब्राजीलियन रूरल सोसाइटी के मार्सेलो वियरा ने बीबीसी से कहा कि इस आग के लिए किसान जिम्मेदार नहीं है।
These fires are not set by farmers. They are mostly accidental or...
ये आग किसानों की लगाई नहीं है। कई बार ये आग गलती से लग जाती है तो कई बार लकड़ी का अवैध व्यापार करने वाले लगाते हैं तो कई बार इस संरक्षित जगह पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाने वाले आग लगा देते हैं। ये ब्राजील के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन वनों के विनाश की वजह से मौसम पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। मार्सेलो वियरा के शब्द। अमेरिका ने जापान के साथ 3 साल से चले आ रहे एक खुफिया समझौते को दक्षिण कोरिया द्वारा तोड़ दिए जाने पर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस समझौते के टूटने से अमेरिका बहुत दुखी है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अपने गठबंधन के दोनों प्रमुख देशों से आग्रह किया है कि वे आपसी संपर्क में रहें। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक विशेष बैठक कर रही है। इस बैठक में अमेरिकी मीडियम रेंज मिसाइलों से पैदा होने वाले खतरों के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। शीतकाल युद्ध के INF यानी इंटरमीडिएट परमाणु हथियार समझौते से बाहर आने के अमरीकी फैसले के बाद अमरीका ने पहली क्रूज मिसाइल परीक्षण की घोषणा की है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सुरक्षा परिषद की बैठक जरूरी थी क्योंकि न सिर्फ एशिया पैसिफिक बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अमरीकी मिसाइलों की संभावित तैनाती के बाद से सभी चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत जोनाथन कोहेन ने सुरक्षा परिषद में इस बात को समझाने की कोशिश की कि आखिर अमरीका को INF समझौते से क्यों अलग होना पड़ा।
The United States will not remain a party to a treaty that is deliberately violated by Russia.
अमेरिका ऐसे संधि का हिस्सा नहीं हो सकता है जिसका कि रूस जानबूझकर उल्लंघन करता है। नेटो के दूसरे सहयोगियों का भी मानना है कि रूस ने इस संधि का उल्लंघन किया है। मुझे इस बात को दोहराने दें कि रूस ने इस समझौते की शर्तों को तोड़ा है। नेटो के सहयोगियों ने अमेरिका के इस फैसले का समर्थन किया है। हम लोग आज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि रूस एक ऐसी दुनिया चाहता है जिसमें अमेरिका तो INF समझौते का पूरी तरह पालन करे लेकिन रूस नहीं। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। 23 तारीख और दिन है शुक्रवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से। फ्रांस ने कश्मीर और अनुच्छेद 370 के मामले में पूरी तरह से भारत का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कल लंबी मुलाकात हुई। मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों फ्रांस में हैं। इसी दौरान मोदी और मैक्रों के बीच कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इसी दौरान मैक्रों ने इसका जिक्र किया। पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा,
भारत और फ्रांस के बीच संबंध सैकड़ों साल पुराना है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी है। यही कारण है कि भारत और फ्रांस ने कंधे से कंधा मिलाकर आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की है। आज आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी के समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ मजबूती से खड़े हैं।
ये थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, इस बारे में और जानने के लिए मैंने पेरिस स्थित वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नैयर से बात की।
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर दोनों नेताओं ने काफी खुल के बात की थी वो था ऑब्वियसली कश्मीर। उसमें राष्ट्रपति मैक्रों ने कम से कम 3-4 बार ये इसको अंडरलाइन किया है कि फ्रांस इसे शुरू से एक बायलैटरल इशू मानता आया है और फ्रांस के हिसाब से जिस तरह से मोदी जी ने उन्हें समझाया था कि इस इशू को जिस तरह से वो टैकल कर रहे हैं उससे रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उससे जो आतंकवाद का जो दबाव है भारत पर या उस एरिया में उस रीजन में उसकी कम उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, वो टेररिज्म कम होगा और एक तरह से भारत अपने अंदरूनी मामले को सही कर रहा है, एक जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर रहा है। तो राष्ट्रपति मैक्रों ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि फ्रांस इसमें भारत की इन तीन मुद्दों से पूरी तरह से सहमत है और उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले कुछ दिनों में वो फ्रांस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी बात करेंगे और उसमें भी इसी बात को दोहराया जाएगा कि रीजनल स्टेबिलिटी, टेररिज्म को कम किया जाए और इस मुद्दे को पाकिस्तान और भारत बायलैटरली सुलझा लें और जहां तक है एस्केलेशन ना हो, डी एस्केलेशन की बात हो और जल्दी से जल्दी वहां पे एक पीस और सिक्योरिटी वापस बहाल हो जाए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इन दोनों नेताओं ने अपने भाषण में, मोदी ने भी इसी बात को फिर से दोहराया कि भारत के लिए किस तरह ये 370 धारा खत्म करना जरूरी था।
तो रणवीर नैयर साहब, यकीनन भारत की दृष्टि से ये रफाल के मामले में भी कुछ बातचीत हुई।
जी हाँ, अपने भाषण में राष्ट्रपति मैक्रों ने फिर से यही बताया कि रफाल का पहला जहाज जो है एकदम वक्त से थोड़ा पहले भारत को डिलीवर किया जाएगा अगले कुछ सप्ताह में, मतलब सितम्बर के महीने में जैसा की टाइम टेबल था। और उन्होंने एक बात जिसको खुल के नहीं कहा लेकिन एक तरह से लेफ्ट इट टू अंडरस्टैंड या मतलब बात कह के छोड़ दी कि आगे भी जो डिफेंस कोऑपरेशन होगा फ्रांस और भारत के बीच में वो इसी तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स का होगा। तो इस बात से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत और फ्रांस के नेताओं में आज बातचीत हुई होगी, आगे जो फॉलो ऑन ऑर्डर्स होने हैं रफाल के। फ्रांस की इच्छा है कि भारत कम से कम 36 और रफाल खरीदे और उसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है जिसके लिए भारत की नेवी ढूंढ रही है अपने लिए करीबन 200 हेलीकॉप्टर, तो उसकी एक डील का नया टेंडर खुलने वाला है या नया टेंडर आएगा। तो उसमें फ्रांस चाहता है कि जो उसके एयरबस हेलीकॉप्टर्स हैं जिसके साथ भारत का पहले ही काफी पुराना संबंध है, करीबन 30 साल से भारत यूज कर रहा है एयरबस के हेलीकॉप्टर्स को, तो फ्रांस चाहेगा कि भारत इस सेक्टर में भी उसके साथ ही आगे डील करे। तो उन्होंने इस बात को क्लियरली अंडरलाइन किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होंगे और मरीन, एयर और लैंड तीनों फोर्सेस के लिए ऐसी कुछ और डील्स की बातें हो सकती हैं आगे।
उसके अलावा किन अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई या कोई सहमति बन पाई?
और एक जो मेजर मुद्दा जिसपे काफी समय से बात अटकी हुई थी जिसपे अब शायद कुछ प्रोग्रेस हुई है वो है जैतापुर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये फ्रांस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा इंडिया में अगर ये मतलब एक डील कंक्लूड होती है जल्दी। तो राष्ट्रपति मैक्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने ये निश्चित किया है कि इस साल के अंत तक जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का उस पर एक सहमति बन जाए ताकि फाइनल अकॉर्ड इसका इस न्यूक्लियर डील का अगले साल में जल्दी से हो जाए। तो ये एक 10 बिलियन यूरो उस समय की पुराने करीबन 6 साल पहले की डील थी, आज के हिसाब से ये कम से कम 20 बिलियन यूरो की डील होगी।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नैयर। और अब लौटते हैं भारत। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की अदालत ने कल उन्हें 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को सीबीआई मुख्यालय में उनसे 3-4 घंटों तक पूछताछ हुई थी, जिसके बाद उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था। तमिलनाडु के कराईकुड़ी से दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में पहुंचकर 10 जनपद के सबसे भरोसेमंद नेता बनने की चिदंबरम की कहानी सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम तमिलनाडु के चेट्टियार समुदाय से आते हैं। चिदंबरम का परिवार तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में कराईकुड़ी इलाके का रहने वाला है। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने विज्ञान में स्नातक किया, लेकिन जब उनके परिवार ने कहा कि उन्हें घर का बिजनेस संभालना है तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। फिर उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। इसके बाद हार्वर्ड से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और कानून की पढ़ाई की। वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनीस कहती हैं कि जब चिदंबरम वापस लौट कर आए तो उनकी मुलाकात एक लड़की नलिनी से हुई।
नलिनी भी बहुत ही समृद्ध परिवार की थी, उनके पिता हाई कोर्ट में जज थे, लेकिन उनकी जाति की नहीं थी, वो गाउंडर थी जो कि कुल मिला के उनसे नीची जाति मानी जाती है। तो जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि और ये अपने परिवार में घोषणा की कि वो नलिनी से शादी करना चाहते थे, तो उनको उनके परिवार ने कहा कि तुम अगर ऐसा करना चाहते हो तुम घर छोड़ दो। उनके पास एक सूटकेस था और 2400 रुपए थे। उन्होंने कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और गए और लीगल प्रैक्टिस शुरू की। साथ साथ उन्होंने राजनीति भी करनी शुरू की। उन्होंने एज अ लॉयर बहुत सारे ट्रेड यूनियन के केसेस लिए और लेफ्ट विंग राजनीति करने की कोशिश की।
अदिति बताती हैं कि इस दौरान एक एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चिदंबरम को पहले तो कपड़ा मंत्रालय देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब चिदंबरम ने कहा कि उनके परिवार का कपड़े का बिजनेस है लिहाजा कोई अन्य मंत्रालय दिया जाए तो चिदंबरम को कार्मिक मंत्रालय दिया गया।
वहाँ पर उन्होंने विस्तृत रिफॉर्म किए। आज की तारीख में जो पब्लिक सर्वेंट्स को छुट्टी मिलती है वो चिदंबरम की वजह से है। उन्होंने कहा कि हर आदमी को एक दिन चाहिए जो कि अपने परिवार के साथ बिता सके। गृह मंत्रालय में राजीव गांधी के कान और आंख पी चिदंबरम थे।
राजीव गांधी की हत्या के बाद जब तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के शव से मिले जूते, घड़ी और कपड़े वापस नहीं दे रही थी, तब चिदंबरम की वकील पत्नी नलिनी ने गांधी परिवार की तरफ से अदालत में केस लड़ा और परिवार को राजीव गांधी की उन चीजों पर अधिकार दिलाने का काम किया। इसके बाद चिदंबरम पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी मंत्री बनाए गए। उसी दौरान हर्षद मेहता घोटाला सामने आया। हर्षद मेहता ने जिन कंपनियों में पैसे लगाए थे उनमें से कुछ कंपनियों में चिदंबरम की पत्नी ने भी पैसे लगाए थे।
उन्होंने इसका पूरा खुलासा पीवी नरसिम्हा राव से मिलके और उनको समझा दिया कि मेरी पत्नी ने ये अनजाने में ये निवेश किया है और मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। चिदंबरम नरसिम्हा राव के पास पहुंचे और उनसे बात हुई, लेकिन घर पहुंचने से पहले उनको टीवी से पता लगा कि उनका इस्तीफा नरसिम्हा राव ने एक्सेप्ट कर लिया है।
इस प्रकरण से चिदंबरम और नरसिम्हा राव के बीच गहरी खटास हो गई और जब नरसिम्हा राव ने तमिलनाडु के चुनाव में पारंपरिक साझेदारी डीएमके की जगह एआईएडीएमके की जयललिता के साथ कांग्रेस का गठजोड़ किया तो नाराज चिदंबरम ने जीके मूपनार के साथ एक अलग पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन किया और चुनाव में भारी जीत दर्ज की।
दोनों ने मिलकर सरकार बनाने का निर्णय किया, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा दिन चली नहीं। कुछ साल बाद जीके मूपनार का देहांत हो गया, क्योंकि वो नहीं थे, वो एक सीमेंटिंग फैक्टर थे उस पार्टी के लिए, तो उनके बिना उनको लगा कि ये चलेगा नहीं और तमिल मनीला कांग्रेस को फाइनली डिसबैंड कर दिया गया। चिदंबरम वापस कांग्रेस में आ गए और तब तक पीवी नरसिम्हा राव भी एक तरह से विलीन हो गए थे। सोनिया गांधी फिर राजनीति में आईं और उन्होंने चिदंबरम की मदद ली।
आर्थिक नीति के मोर्चे पर चिदंबरम के कार्यकाल में क्या अच्छा हुआ, इस पर परंजॉय कहते हैं,
उस समय भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे, जिस रफ्तार से बढ़ रहे उसे ज्यादा बढ़ रहे थे, ये देश का फायदा हुआ। उस समय कर्ज माफी भी किया था जो यूपीए सरकार ने किया था किसान लोग के लिए, वो कहेंगे ये देश के हित में है। कैबिनेट ने बहुत सारे राय लिया था जैसे मनरेगा।
गुहा कहते हैं कि नरसिम्हा राव सरकार में वाणिज्य राज्य मंत्री के रूप में चिदम्बरम आयात निर्यात के क्षेत्र में उदारीकरण लाए थे। हालांकि परंजॉय कहते हैं कि चिदम्बरम और उनके बेटे के खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत ये कोर्ट तय करेगा।
ये थी गुरप्रीत सैनी।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत समेत ईरान, रूस और तुर्की को कभी न कभी अफगानिस्तान में चरमपंथ के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका 7000 मील दूर से अफगानिस्तान में चरमपंथ से लड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ही उसकी मदद नहीं करते, जो कि सही बात नहीं है। कुछ दिन पहले ही चरमपंथी संगठन आईएस ने अफगानिस्तान में एक शादी समारोह में बड़ा हमला कर दिया था जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप के हालिया बयान को लेकर बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और सुरक्षा विश्लेषक रहीमुल्ला यूसुफ जई से बात की।
देखिए, अमेरिका की पहले की ख्वाहिश रही है कि जो बाकी मुल्क हैं इस पूरे खत्ते में वो भी दहशत गर्दी के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ जंग में हिस्सा लें, अमेरिका का और नेटो का हाथ बटाएं, लेकिन इसका कोई तरीकाकार अभी तक मालूम नहीं हो सका। चूंकि अमेरिका की फौजें अभी भी अफगानिस्तान में हैं और तालिबान से अमन मुजाकरात भी हो रहे हैं, ये भी एक तवक्को है अमेरिका को और रूस को भी और ईरान को भी और चीन को भी और पाकिस्तान को भी कि तालिबान से अगर पीस एग्रीमेंट हो जाए तो तालिबान भी पूरे तरीके से दाइश के खिलाफ जंग में हिस्सा लेंगे। तो ये सारी गुफ्तगु हो रही है, लेकिन कोई मैकेनिज्म अभी तक इसके लिए नहीं बनाया गया कि कैसे ये ताउन करेंगे, कैसे ये अफगानिस्तान अपनी फौज भिजवाएंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे अफगानिस्तान की फौज को। यानी ये सारी चीजें जब तक तय नहीं होंगी उस वक्त तो मुझे लगता नहीं है कि जो ट्रंप कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा।
ट्रंप ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में चरमपंथ के खिलाफ अब तक सिर्फ अमेरिका ही लड़ रहा था, जबकि भारत पड़ोसी देश होकर मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान ने भी बहुत कम मदद की।
देखिए, अमरीका तो जंग अपने मकासद के लिए कर रहे हैं ना। अमेरिका के ऊपर तो हमला हुआ था 9/11 का, उन्होंने फैसला किया कि अलकायदा ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया और अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया और फिर तालिबान ने अलकायदा को, ओसामा बिन लादन को पनाह दी। उसने तो बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, बाद में फिर नेटो की मजीद फौजें शामिल हो गई अमेरिका के साथ। पहले तो जंग सिर्फ शायद अलकायदा के खिलाफ थी और तालिबान के खिलाफ भी एक हद तक थी, लेकिन अब तो जंग ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों के खिलाफ अमेरिका कर रहा है। और अगर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई तो फिर क्यों अमेरिका की फौज वापस जा रही है, क्यों अभी और मुल्कों से कहा जा रहा है कि वो भी इसमें हिस्सा लें।
ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस को 100% खत्म कर दिया, 100% खत्म कर दिया और वो भी रिकॉर्ड वक्त में। लेकिन हाल में आईएसआईएस ने अफगानिस्तान में एक शादी समारोह में एक बड़ा हमला किया जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए।
अमेरिका तो ये भी कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में, सीरिया और इराक में भी अमेरिका ने आईएसआईएस दाइश को खत्म कर दिया। हालांकि अमेरिकन ने तो अकेले नहीं किया, वहाँ तो रूस भी जंग कर रहा है, सीरिया की फौज भी है, बाकी मुल्क भी, इराक की फौज है वो भी जंग कर रहे हैं और वहाँ पे सीरिया के लोकल ग्रुप्स हैं इराक के, वो भी दाइश के खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये तो अमेरिका का वैसे दावा है। अफगानिस्तान में तो मेरे ख्याल में अमेरिका ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की आईएसआईएस के खिलाफ, और इन्होंने सिर्फ एयर स्ट्राइक्स किए हैं, उन्होंने अपने वॉर प्लेन्स इस्तेमाल किए, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स, باقی تو انہوں نے گراؤنڈ آفینسو کوئی نہیں کیا داعش کے خلاف. داعش تو ابھی بھی کافی علاقوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے. تو میرے خیال میں اب ظاہر ہے دعوے کرنا یہ ایک بات ہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے.
تو پشاور سے یہ تھے ورشٹھ پترکار رحیم اللہ یوسف زئی, جو امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بارے میں بات کر رہے تھے جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں چرم پنتھ کے خلاف اور دوسرے دیشوں کو, خاص کر بھارت, ایران, روس اور ترکی کو بھی چرم پنتھ کے خلاف یہ لڑائی لڑنی ہوگی. اور اب اخباروں کی سمیکشا کا وقت ہو گیا ہے اور بھومی کا تمام اخباروں کے ساتھ موجود ہیں سرخیاں. ایک تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چدمبرم کی خبر ہوگی.
بالکل, لیکن چدمبرم کی خبر ہر اخبار کے پہلے پنے پر ہے اقبال, اور جن ستا اخبار ہے میرے ہاتھ میں جس میں پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے کہ 4 دن کے ریمانڈ پر بھیجے گا چدمبرم. لیکن اسی سے جڑی ایک خبر ہے کہ سنیل گوڑ جو ہیں وہ سیوا نورت ہوئے. سنیل گوڑ وہی ہیں ہائی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے ان کی یاچکا کو, جو انہوں نے ضمانت یاچکا دی تھی چدمبرم نے, جسے
جی
اسے خارج کر دیا تھا اور وہ سیوا نورت ہو گئے ہیں. تو یہ دونوں خبریں ایک ساتھ جن ستا کے پہلے پنے پر ہیں. اس کے علاوہ پرورتن ندیشالے کے ادھیکاریوں نے گروار کو مہاراشٹر نو نرمان سینا کے ادھیکش راج ٹھاکرے سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے. قریب 9 گھنٹے تک یہ پوچھ تاچھ چل. چلیے آپ کے پاس بھی اسی سے چدمبرم سے جڑی ایک سونیا گاندھی کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے اقبال, آپ پڑھ رہے تھے.
دیکھیے کل وہ راجیو گاندھی یعنی سونیا گاندھی کے پتی اور پورو پردھان منتری, ان کی 75ویں جینتی کے موقع پر وشیش کارکرم کا آیوجن کیا تھا کانگریس میں, کانگریس نے. اور اس وقت سونیا گاندھی یہ کہہ رہی تھی, انہوں نے اشاروں میں کیندر سرکار پر نشانہ سادھا. انہوں نے کہا کہ 1984 میں جب چناؤ ہوئے تھے اندرا گاندھی کی ہتیا کے بعد, عام چناؤ ہوئے تھے دسمبر میں, تو راجیو گاندھی کو 400 سے زیادہ سیٹیں ملی تھی, بہت بھاری بہومت سے جیت کروائے تھے. لیکن وہ بہومت کسی کو ڈرانے کے خلاف, میں سونیا گاندھی کے اگر شبدوں کا استعمال کروں, انہوں نے کہا کہ وہ بہومت ڈرانے کے لیے سرکار نے اس وقت کی جو راجیو گاندھی سرکار تھی اس کا استعمال نہیں کیا تھا, بلکہ انہوں نے اس کا استعمال چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور دوسروں کی اسہمتی اور مختلف نظریاں کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا. ظاہر ہے یہ اشارہ سیدھے طور پر نریندر مودی کی سرکار پر ہے, لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. اور راہل گاندھی بھی کل موجود تھے اس پروگرام میں, اور انہوں نے بھی اپنے پتا کے سمے یہ کہا کہ پنجاب, اسم اور میزورم میں جو سمجھوتے ان کے پتا نے کیے تھے ان کے کارن ان راجیوں میں جو برسوں سے چلی آ رہی ہنسا تھا اس کا انت ہوا ہے. تو سونیا گاندھی اور راہل گاندھی دونوں نے اس بہانے اپنے پتا کو یاد کیا, پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کو یاد کیا, اور موجودہ کیندر سرکار کو ایک طرح سے نشانہ سادھا ان پر اشاروں میں
جی.
اور کہا کہ یہ بھارت کو مضبوط کرنے کی وہ بات کرتے تھے, بھارت کو کمزور اور توڑنے کی بات وہ نہیں کرتے تھے.
جی نو بھارت ٹائمس اخبار نے لکھا ہے کہ نیتا جی کی استھیوں کی ڈی این اے جانچ کی بات کی گئی ہے. نیتا جی سبھاش چندر بوس کی بیٹی انیتا بوس نے گروار کو جاپانی مندر میں رکھی نیتا جی کی استھیوں کی ڈی این اے جانچ کو سنشچت کرنے کی پی ایم مودی سے گہار کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ڈی این اے جانچ کی جائے. اور ان کا یہ ایک آروپ بھی ہے کہ انہوں نے پچھلی سرکاروں سے بھی کئی بار اس کو لے کر کے بات کی تھی, لیکن کسی نے بھی ان کی بات سنی نہیں اور اسے اندیکھا کیا اور انسنا کر دیا. اس کے علاوہ صحت سے جڑی ایک خبر نو بھارت اخبار نے چھاپی ہے, جس میں لکھا ہے کہ پلاسٹک کی بوتل سے کینسر ہوتا ہے, اس کے پختہ ثبوت نہیں ہے. یہ وشو سواستھ سنگٹھن کی اور سے جاری ایک رپورٹ کے حوالے سے لکھا گیا ہے, لیکن سنستھا نے یہ بھی کہا ہے کہ پلاسٹک کا استعمال اتنا ضروری بھی جتنا کم ہو سکے اتنا کریں, اتنا رہے گا اچھا. اور غازی آباد میں سیور کے مین ہول میں 5 مزدور اترے تھے, ان کی زہریلی گیس سے موت ہو گئی ہے, ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور آپ کو خبر دیتے چلوں کہ پورو وت منتری جیٹلی جو ہیں ان کی حالت ابھی بھی اسی طریقے سے گمبھیر بنی ہوئی ہے, وہ ایمس میں بھرتی ہیں.
بہت شکریہ بھومیکا آپ کا اخباروں کی سمیکشا کے لیے, اور آپ نے غازی آباد میں 5 صفائی کرمیوں کی موت کا ذکر کیا اخبار کے حوالے سے. اسی خبر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ راجدھانی دلی سے قریب غازی آباد میں سیور کی صفائی کر رہے 5 صفائی کرمیوں کی کل موت ہو گئی. ایک ٹھیکیدار کے لیے کام کر رہے یہ صفائی کرمی سیور لائن میں صفائی کرنے اترے تھے, اسی دوران دم گھٹنے سے ان کی موت ہو گئی. راجیہ سرکار نے مرتکوں کے پریواروں کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی گھوشنا بھی کی ہے اور جانچ کے بھی آدیش دیے ہیں. اس بارے میں اور جانکاری دے رہے ہیں سمیر آتمج مشر.
گروار کو برسات میں بھرائے سیور کی صفائی کرنے ایک ایک کر کے 5 صفائی کرمی سیور کے بھیتر گئے اور پھر زندہ نہیں بچ سکے. یہ گھٹنا غازی آباد ضلع کے سیہانی گیٹ تھانہ کے تحت آنے والے کرشنا کنج علاقے کی ہے۔ تین مزدوروں کی موت سیور میں دم گھٹنے کے کارن ترنت ہی ہو گئی، جبکہ دو نے بعد میں اسپتال میں دم توڑ دیا۔ غازی آباد کے ضلع ادھیکاری اجے شنکر پانڈے نے میڈیا کو بتایا،
اور پھر کہیں سے گیس کا لیکیج بھی ہو سکتا ہے، ابھی کارن اسپشٹ نہیں ہے، لیکن زہریلی گیس ہی پرتھم درشٹیا پر تھی۔ جانچ ابھی جل نگم پرتھم درشٹیا اپنی رپورٹ دیں گے، ان کی رپورٹ دیکھنے کے بعد اگر ہمارے استر سے سمبھو ہوا تو اپنے استر سے بھی جانچ کریں گے۔
وہی معاملے کا ترنت سنگیان لیتے ہوئے راجیہ سرکار نے پرتھم درشٹیا لاپرواہی کے آدھار پر جل نگم کے مہا پربندھک اور ایکسی این سمیت چار ادھیکاریوں کو نلمبت کر دیا۔ سرکار نے گھٹنا کی جانچ جل نگم کے پربندھ ندیشک کو کرنے اور دو دن کے بھیتر رپورٹ دینے کو کہا ہے۔ سرکار نے جل نگم سے مرتکوں کے پریوار والوں کو معاوضہ دینے کو بھی کہا ہے، اور یہ معاوضہ سیور کا کام کرانے والی فرم سے دلانے کے نردیش دیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں سیور کی مکھیہ لائن سے کنیکشن دینے کا کام چل رہا تھا۔ کچھ پرتیکش درشیوں کا کہنا تھا،
جل نگم کی لائن ڈل لیے تو اس میں جو گھروں میں کنیکشن کر رہے تھے کرمچاری، انہوں کنیکشن کرنے کے لیے اس میں اترے نیچے، اس میں پانی بارش کا بھرا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس میں گیس بھر گیا۔ ایک گیا تو اسے دوسرا بچانے کے لیے اسے دھیرے دھیرے کر کے پانچوں اسی میں چلے گئے۔
ٹھیکیدار کا جو کام کر رہے تھے وہ گھروں میں کنیکشن ڈال رہے ہیں، شیور لائن ڈلی ہوئی ہے تو شیور لائن سے مین میں سے گھروں میں کنیکشن ڈال رہے ہیں، اور اس میں بارش کی وجہ سے پانی گیا بھرا ہوا کافی، جیسے ایک کرمچاری اس میں سب کو گیا لیبر کا آدمی، اور اس طرح سے چاروں پانچوں اس طرح سے اندر چلے گئے، ایک بھی باہر نہیں آیا۔
سرکار نے اس معاملے میں پرتھم درشٹیا جل نگم وبھاگ کی لاپرواہی مانا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ نگر نگم کے بھی کرمچاری سرکار کے راڈار پر ہیں، حالانکہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ٹالنے کی کوششیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ نگر آیوکت دنیش چندر کا کہنا تھا،
نگر نگم سے اس کا ڈائریکٹ روپ سے سمبندھت نہیں ہے، لیکن چونکہ نگر نگم چھیتر میں یہ نرمان کاریہ چل رہا تھا، یہ نرمان کاریہ جل وبھاگ دوارا جل نگم دوارا کیا جا رہا ہے۔ اس گھٹنا میں جس لوگوں کی بھی لاپرواہی ہے ان کے ورودھ کاروائی کی جا رہی ہے اور ایف آئی آر درج کرائی جائے۔
مارے گئے صفائی کرمیوں کی ابھی پہچان نہیں ہو پائی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ سبھی بہار کے رہنے والے تھے۔ سیور کی صفائی کرتے وقت صفائی کرمیوں کی موت کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں، نہ صرف غازی آباد میں بلکہ راجیہ کے دوسرے حصوں سے بھی ایسی خبریں اکثر آتی ہیں۔ سمیر آتمج مشر، بی بی سی لکھنؤ۔
اور اب اینٹیگا میں بھارت ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیسٹ میچ کی جانکاری دے رہے ہیں اپورو کرشن۔
جی اقبال، بھارت ویسٹ انڈیز جو سیریز چل رہی ہے اس میں اینٹیگا میں دونوں دیشوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو چکا ہے، اور پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے 6 وکٹ پر 203 رن بنا لیے ہیں۔ رشبھ پنت 20 اور رویندر جڈیجا 3 رن بنا کر کریچ پر موجود ہیں۔ حالانکہ بارش کا کافی اثر رہا پہلے دن کے کھیل پر، اور کیول 68.5 اووروں کا کھیل ہو پایا۔ شروعات بھارت کی بے حد خراب رہی، پانچویں اوور میں کیمار روچ نے میانک اگروال اور کیمار روچ کے طور پر دو وکٹ لیے۔ ٹیم انڈیا کی اور سے اجنکیہ رہانے نے سب سے زیادہ 81 رن بنائے، اس کے علاوہ کے ایل راہل 44 رن بنائے انہوں نے۔ حالانکہ چیتیشور پجارا اور وراٹ کوہلی پہلی پاری میں کچھ خاص نہیں کر پایا، بھارت کی شروعات بے حد خراب رہی ہے اس میچ میں۔ پجارا کیول 2 رن بنا سکے جبکہ کوہلی نے 9 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی اور سے کیمار روچ نے سب سے زیادہ 3 وکٹ جھٹکے، جبکہ گیبریل نے 2 وکٹ چٹکائے۔ گیبریل نے کوہلی اور اجنکیہ رہانے کے طور پر دو سب سے قیمتی وکٹ حاصل کیے۔ اقبال
بہت شکریہ پورو۔ اور اب پرمکھ سماچار۔
بی بی سی سماچار۔ فرانس کے راشٹرپتی ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس پہلے سے ہی مانتا آیا ہے کہ کشمیر ایک دوی پکشی مدعا ہے اور بھارت پاکستان کو اسے شانتی سے سلجھانا چاہیے۔ آئی این ایکس میڈیا کیس میں پورو وت منتری پی چدمبرم کو سی بی آئی عدالت نے 26 اگست تک کے لیے سی بی آئی حراست میں بھیج دیا ہے۔ دنیا بھر کے نیتاؤں نے برازیل کے امیزن کھیتر کے ورشا ون میں لگنے والی آگ کو لے کر کے چنتا ظاہر کی ہے۔ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد ایک وشیش بیٹھک کر رہی ہے۔ اس بیٹھک میں امریکی میڈیم رینج میسائلوں سے پیدا ہونے والے خطروں کے بارے میں وچار ومرش ہو رہا ہے۔ ویڈیو پلیٹفارم یوٹیوب نے قریب 210 یوٹیوب چینلز کو یہ کہتے ہوئے بند کر دیا ہے کہ یہ چینل ہانگ کانگ میں سرکار کے خلاف ہو رہے پردرشنوں کو لے کر غلط سوچنا پھیلا رہے تھے۔ ایران کے شوت کرتاؤں کا کہنا ہے کہ کم قیمت والی 4 الگ الگ دوائیوں کے گڑوں والی ایک ایسی دوا ایجاد کی گئی ہے جسے ہارٹ اٹیک اور دل سے جڑی دوسری بیماریوں کے خطرے کو کم کیا جا سکے گا۔ بی بی سی سماچار۔
تو نمسکار، بھارت کا یہ انک یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آج اسٹوڈیو کی ذمہ داری سنبھالی اجیت سارتھی نے۔ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے کارکرم دن بھر میں، لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ 24 گھنٹے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر۔ اور اب اقبال احمد کو دیجیے اجازت۔ نمسکار۔